Ladies and gentlemen, good day and welcome to Samvardhana Steel Tubes Limited Q3 FY26 earnings conference call hosted by Monarch Networth Capital Limited. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during this conference call, please signal an operator by pressing star, then zero on your touch-tone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Sahil Sanghvi from Monarch Networth Capital Limited. Thank you, and over to you, sir.
Thank you, Palak. Good evening, everyone, and welcome to Samvardhana Steel Tubes Limited's earnings call to discuss Q3 and nine-month FY26 performance. Before we begin, we would like to remind you that today's discussion may include certain forward-looking statements, which should be considered in the light of the risks and uncertainties outlined by the company. Joining us on the call today are Mr. Vikas Kumar Goel, Managing Director and CEO, Ms. Anu Garg, Chief Financial Officer, Mr. Vikas Agarwal, Chief Strategy Officer, and Mr. Mayank Agarwal, AVP CEO's Office and Investor Relations. I now invite Mr. Vikas Goel to take us through the business outlook and key financial highlights, following which we'll open the floor for questions. Thank you, and over to you, Vikas Ji.
Thank you, Sahil. Good evening, everyone. Thank you for joining us for Samvardhana Quarter 3, nine-month financial year 26 earnings call. I hope you have had an opportunity to go through our financial disclosures available on the exchanges. I will walk you through the key strategic updates, operational progress, and the financial performance, followed by the question-and-answer session. I am pleased to share that Samvardhana has delivered its strongest-ever nine-month performance, with total sales volume, revenue, EBITDA, and PAT growing by 34%, 70%, 73%, and 110%, respectively, reflecting robust operational and financial progress. Before delving into the performance details, I would like to highlight some key strategic updates. On the capacity expansion front, the company is developing a greenfield project at Kesda and Kothareli Unit 2. We are pleased to inform you that environmental clearance from MoEF Delhi has been received, and the project execution has commenced, and within just 2 months of breaking the ground, we have achieved significant progress. Under the brownfield expansion, GP capacity, galvanized capacity has been increased to 116,000 tons per annum. Additionally, we are progressing to doubling the stainless steel CR capacity from 58,000 tons per annum to 116,000 per annum, for which the CBE consent to establish has already been received. Also, I would like to mention that we have executed 4 MoUs to commence stainless steel pipes manufacturing under the co-branding, and several other MoUs are in progress. Coming to operational performance, during Quarter 3, financial 26, Samvardhana has achieved its ever-highest sales volume of value-added products with strong contribution across all segments. During nine months, financial year 26, Samvardhana reported record-high sales volume, with value-added sales volume at 260,000 tons, marking a growth of 60%. The stainless steel segment has performed exceptionally well during the quarter and also in nine months of financial 26. As a result, EBITDA per ton remained healthy over rupees 6,800 in nine months, financial year 26. The management continues to execute its strategic roadmap by steadily transitioning the product mix towards high-margin and value-added products. Moving to financial performance, on nine-month basis, Samvardhana delivered its highest-ever revenue, EBITDA, and PAT. Revenue increased to rupees 1,728 crores, reflecting a 70% increase year-on-year, supported by better operational efficiency and higher production and sales volume. EBITDA grew 73% year-on-year to rupees 184 crores, and PAT is more than double to rupees 88 crores. Looking at the quarterly numbers, we have achieved revenue and EBITDA of rupees 589 crores and 51 crores, reflecting the robust growth of 60% and 34% respectively. PAT has more than doubled to 24 crore on the year-on-year basis. I would like also to highlight that financial cost declined significantly, driven by the repayment of long-term borrowings. In conclusion, Sambhav remains well-positioned to sustainable value-added growth, supported on ongoing capacity expansion, improving market penetration, and strong distributor and customer network that enhance product reach. Our continued focus on value-added products, operational efficiency, and brand building is strengthening our competitiveness and the resilience. With the strategically located integrated plant, efficient captive power system, and expanding OEM and dealer relationship, the company is well placed to benefit from the growing demand in India's steel pipes and tubes and stainless steel market. Supported by healthy balance sheet, experienced leadership, strong stakeholder confidence, Sambhav continues to progress steadily towards its long-term growth objectives. As we always say, Sambhav hai, to sir Sambhav hai. That's all from me. I would now respect to open the floor for Q&A. Thank you.
Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may please press star and one on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Hardik Gandhi from HPMG. Please go ahead.
Hello, sir. Congratulations on a good set of numbers. Hope I'm audible.
Yes, you.
Yes, sir.
Yeah, so just I was following this trend in your company where quarter on quarter the EBITDA per ton is reducing, where we understood our value-added products were supposed to increase the EBITDA per ton. If we see on quarter two versus quarter three, our EBITDA per ton fell from 6,100 to 5,200. And there's a significant pressure on our EBITDA margin. So can you just help us understand that?
जैसे कि Q1 हमारा बहुत अच्छा था, सेफगार्ड ड्यूटी उस टाइम पे इंपोज हुई थी, क्वाइल के प्राइस बहुत अच्छे इंक्रीज हुए थे, और वही हमें लग रहा था कि पूरे साल कंटिन्यू होगा, लेकिन सेकेंड क्वार्टर में जैसे हमने फर्स्ट उसमें भी बोला था कि रेनी सीजन के लिए थोड़ा सा एक डल सीजन होता है, तो उसमें हमारे थोड़े से मार्जिन डाउन हुए थे, तो वो एक हर साल का सेकेंड क्वार्टर का एक आप बोल सकते हो कि रेनी सीजन के कारण जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं लाइक कोल आयरन और थोड़ा उसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है तो वो एक परसेंट का हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें फर्क पड़ता है. लेकिन Q3 में भी हमारा एक EBITDA माइन कम हुआ जो कि हमें था कि अच्छा होना चाहिए, लेकिन इसके कुछ रीजन रहे. पहला रीजन तो था कि इसमें जो स्टेनलेस स्टील इम्पोर्ट की विंडो गवर्नमेंट ने ओपन की 3 मंथ के लिए, जो पहले एक इन्होंने जो अनाउंस किया था जून में कि विदाउट BIS बिलेट्स यूज किए हुए जो क्वाइल्स हैं वो इंडिया में इंपोर्ट नहीं हो पाएंगे, उसके लिए फिर कुछ इंपोर्टर्स ने बोला कि भाई हमारे माल अटके हुए हैं, हमारी पेमेंट अटकी हुई है, तो गवर्नमेंट ने 3 मंथ की विंडो ओपन की कि अक्टूबर से दिसंबर तक जो भी मार्केट पेंडिंग है वो माल इंडिया में आ जाए. सर, हम थोड़ा सा 2 से 3% का एक इम्पैक्ट आया स्टेनलेस स्टील की प्राइसिंग में. दूसरा, HR क्वाइल के प्राइस लगभग 6% के आसपास डाउन हुए इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन ऑफ Q2, तो वो भी एक कारण रहा कि हमारे जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी डाउन हुए कंपेरेटिवली, लेकिन वो डाउन हुए नवंबर में, और वो माल जो हमारे पास में डिलीवर हुए नवंबर एंड दिसंबर में, अभी हमने उनको यूज करना शुरू किया जनवरी में, तो जो मेरे रॉ मटेरियल के प्राइस कम हुए उसका बेनिफिट मुझे आपको Q4 में मिलेगा, लेकिन जो HR क्वाइल के प्राइस कारण कम होने के कारण जो पाइप एंड ट्यूब का प्राइस कम हो गया वो जस्ट तुरंत इफेक्ट में आ गया, वो तो हमारा सेल्स रिलेशन थोड़ा कम हुआ, इस कारण से Q3 आपको मतलब इसमें HR क्वाइल का भी इम्पैक्ट रहा हमारे पाइप प्राइस का भी. तीसरा, हमने गैल्वनाइजिंग प्रोडक्ट की हमारी कैपेसिटी इंक्रीज की, पहले 1 लाख टन की थी उसको 1,16,000 किया, उसके लिए हमने एक एडिशनल वाइडर विथ का CR कॉइल मिल हमने कोल्ड रोलिंग मिल हमने कमीशन किया, तो उस कारण को 15 दिन का हमें मेंटेनेंस और एक शटडाउन पीरियड लेना पड़ा, उस कारण थोड़ी सी हमें उसमें भी एक जो हमको लग रहा था कि हम इम्प्रूवमेंट और कर जाएंगे Q3 में, वो नहीं कर पाए। तो ये तीन कारण रहे जिसके एक कम्युनिटी भी एक आपको थोड़ा सा ये दिखने मिला है, लेकिन ये सारी जो हमको बेनिफिट यहाँ जो लॉस दिख रहा है ये सारा बेनिफिट हमको Q4 में मिलेगा। रॉ मटेरियल प्राइस जो हमको कम रेट के आए उसका बेनिफिट मिलेगा, जो अभी प्राइस का एक एप्रिसिएशन आया जनवरी में लगभग 4,000 रुपीज इंक्रीज हुए हैं कॉइल में, HR कॉइल में, तो हमारे प्राइस के प्राइस भी सिमिलरली इंक्रीज हो गए। और अभी फरवरी में और एक नया इंक्रीमेंट का हुआ है, तो अभी भी हमने प्राइस और हमारे जिस मंथ के जो हमने प्राइस 1 तारीख से अभी लॉन्च किए हैं वो भी हमने इंक्रीज करके किए हैं। तो Q4 में जो हमको लगता है कि जो माइनस हुआ वो सारा अभी बेनिफिट हमको मिल जाएगा।
सर तो गोइंग फॉरवर्ड बेसिस पे व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट अ हेल्दी EBITDA मार्जिन पर टन, बिकॉज वी अर्लियर स्पोक इन द प्रीवियस कॉन्कॉल्स वी स्पोक दैट वी विल बी रीचिंग अ हायर EBITDA पर टन बिकॉज ऑफ द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बाय द एंड ऑफ द ईयर, एंड यू नो दिस इज ऑन द कॉन्ट्ररी कि हमारा रिड्यूस होते जा रहा है, एंड व्हाट वुड बी अ हेल्दी नंबर पर टन, एंड सेकेंड थिंग वॉल्यूम में भी ड्रॉप आया है where the total production volume 3,34,000 से 3,20,000 हुआ है। So, although we are doing a significant expansion, the capacity utilization should be increasing and volume should be increasing. So, थोड़ा एक contrary view दिख रहा है यहाँ पे।
इसमें मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ। पहला आपका है कि जो आपका हमारा सेल्स वॉल्यूम जो एक थोड़ा सा एक उसमें वो दिख रहा है, फर्क दिख रहा है कि जो हमने सेल्स वॉल्यूम किए हैं तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की हमारी सेल बढ़ी है अगर Q3 में देखेंगे आप, और इन टर्म्स ऑफ Q2 और इन टर्म्स ऑफ Q1 ऑल्सो। तो लेकिन हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो हम पहले सेल कर रहे थे उसकी क्वांटिटी हमारी कम हुई है, और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन आप देखेंगे तो प्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया कि हमारा जो गैल्वेनाइजिंग के कारण हमको कुछ प्रोडक्शन कम करना पड़ा तो उसके कारण एक हमारा वो प्रोडक्शन में डीप आया है। और तीसरा जो आपका कहना है कि जो पर टन हमारा प्राइस कम हो रहा है, तो ये तो सर मतलब अभी हम स्टेज में है कि अगर मैं 9 मंथ की देखूं तो ऑल टुगेदर हमारा 6,800 रुपीज का कम्युलेटिवली जो हमारा EBITDA पर टन है सारे प्रोडक्ट्स को मिला के, और गोइंग फॉरवर्ड जो Q4 हमको अच्छा दिख रहा है मान लो तो ये 7,500 रुपीज तक हम इस साल का अचीव कर ले जाएंगे।
सर सो इनडायरेक्टली यू आर सेइंग कि द जंप इन द नेक्स्ट Q4 EBITDA वुड बी इनफ टू राइज द ओवरऑल ईयर पर टन EBITDA। सो आपका कुछ अप्रोक्सीमेटली 9,000 पर टन का EBITDA आना चाहिए इफ दैट इज सपोज टू हैपन।
करेक्शन अंडरस्टैंडिंग, फर्स्ट इज ओवरऑल 26 EBITDA पर टन वी आर एक्सपेक्टिंग एट अराउंड 7,000 रुपीज टन, एंड 7,500 पर टन इज एक्सपेक्टेड फॉर Q4 ओवरऑल।
सो
करेंटली वी हैव अचीव्ड इन Q3 इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ EBITDA इज 5,500 प्लस, and overall for financial year 2026 we will be achieving 7000 plus overall, and for Q4 we are expecting 7500 rupees per ton.
Q4
number,
right? So just to understand where is the confidence coming where we'll be able to jump 1800 rupees EBITDA per ton in just Q4? I know there have been price increases, but is the visibility there? Just
yes sir,
follow up.
The three problems that CEO sir has stated in Q3 is actually getting reversed in Q4. That is, first, coil price has increased by approximately 10% from Q3 in Q4. We have already procuring our raw material at very low cost in Q3, which we are going to utilize in Q4. So that margin expansion will be there from a black carbon black steel side. Secondly, our GP production capacity is already being enhanced and commissioned. That benefit also we will be getting in Q4. Plus stainless steel, if you've seen China export duty of 9% approximately, which they have implemented that. That's why the price of stainless steel across the board has been increased. So benefit of that we also accrue in Q4. Overall, if we see the confidence of incremental EBITDA per ton is coming from all these three factors.
Understood. That's it from my end. I'll join back in the queue if I have any more questions.
Thank you.
Thank you. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, to ask question, please press star and one now. Participants who wish to ask questions may please press star and one at this time. The next question is from the line of Devesh Lakhotia from EGI Asset Manager. Please go ahead.
Yeah, hi sir. Good afternoon. Congrats on the performance.
Thank you.
A couple of questions.
Yes.
One, I think in your opening remark you mentioned about some MOUs being signed. So could you just elaborate on that? And second, on the stainless steel pricing, as you highlighted, withdrawal of rebates on China side. So is it applicable on stainless as well? And what is the kind of improvement in pricing that you have already seen on the stainless side? And this would be more on the 200 series grade where we are predominantly kind of looking at it, right?
फर्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जो हमने जो एमओयूज किए हैं तो अभी चार हमारे हो चुके हैं जिनको हम सप्लाई कर रहे हैं जिसमें को ब्रांडिंग में हमारा स्टेनलेस स्टील के पाइप्स हमारे सेल हो रहे हैं जैसे जिस लाइक जो हमारे बड़ा ब्रांड है वैसे ही करते हैं तो इसमें एक रायपुर की हमारी रायपुर में हुआ है ग्वालियर में संबलपुर में और जमशेदपुर में और अभी हमारे चार और हो चुके हैं जनवरी में तो ये अगले क्वार्टर में आपको और अच्छे नंबर मिलेंगे तो हमारा जो आइडिया है कि हम जो हमारी क्वांटिटी है जो अभी हम लगभग 5000 टन पर मंथ हम क्वाइल सेल कर रहे हैं उसका लगभग 50% हम एमओयू होल्डर्स के थ्रू इसको एग्जीक्यूट करेंगे जिसमें हमारे संभव ब्रांड का पाइप आपको मार्केट में मिलेगा अभी लगभग हमने 700 से 1000 रुपीज के एमओयू 700 से 1000 टन के हमारे एमओयू हो चुके हैं गोइंग फॉरवर्ड उसको और हम 2500 तक इसको भी लेके जाने का हमारा फर्स्ट फेज में हमारा टारगेट है और सेकंड जो आपने चाइना वाली बात बोली तो उसके साथ इसमें
तो दिवेश चाइना यू नो दे हैव ऑलरेडी टाइटन्ड द एक्सपोर्ट रेजिम फॉर स्टेनलेस स्टील स्पेसिफिकली विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 January 2026 दे हैव डन इट परपजफुली टू कर्व अंडर प्राइसिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट एक्सपोर्ट एंड इलीगल ट्रेड विच इज हैपनिंग थ्रू दुबई इंडोनेशिया एंड वियतनाम रूट बिकॉज देयर डोमेस्टिक कंजम्पशन फॉर स्टेनलेस स्टील हैज इंक्रीज ड्रास्टिकली फर्स्ट सेकेंडली द प्राइस of stainless steel across 200, 300, 400 series has been increased with effect from 29th January 2026 by 2000 to 3000 rupees depending on which grade we are talking about. So overall if you see the stainless steel market itself at least for the domestic manufacturer perspective in India seems to be very robust currently because somewhere China is tightening their export to India and secondly Indian stainless steel production itself is not enough to meet the current demand of Indian consumer.
Got it, sir. So just one follow-up on the first question. These MOUs, how does the economics work between us and our partners? Do we sacrifice anything on the margin front or is it more just volume related?
We are just making the marketing aspect for their market कि हम उसके एरिया में जो फैब्रिकेटर्स हैं जो वहाँ पे जो यूजर्स हैं उनके पास में हम मार्केटिंग करें होर्डिंग्स लगाएं बोर्ड लगाएं तो मार्केटिंग एक्सपेंडिचर पर एमओयू होल्डर हमारे थोड़े से बढ़ेंगे और हमको वहाँ पे हमारे ब्रांड का माल सेल करना है तो वो हमारे लिए भी जरूरी है तो ये ही हमारा एक कंपोनेंट आता है हमारे साथ पे कि हमको वहाँ पे मार्केटिंग करना है तो फैब्रिकेटर मीट्स करनी है रेगुलरली वहाँ पे जिससे हमारे ब्रांड की सेल और उनकी सेल दोनों मजबूत हो जाए और कोई हमारा उनके साथ में कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं है या कोई हमको उनका सेल के पार्ट का प्रॉफिट कुछ नहीं मिलता ना हम उनको कोई एक्स्ट्रा उनको बेनिफिट देते हैं
Got it. And अभी right now what would be the average selling price on a per ton basis for pipes for us
for the Q3 or right now
Both Q3 and current position.
So Q3, the HR pipe average realization is 46,100 around. And for the value added products, GP stood at 59,200 and FS coil 200 series is around 1,24,000. And 300 series is much more, that is around 1,80,000.
And similarly, what would be right now for these products?
This black pipe is right now is 52,000 rupees per ton. And the galvanized product is 66,000 per ton. And the stainless steel is 126, I think.
Got it, sir. Got it. Thanks a lot.
तो ये जो ब्लैक का प्राइस है ये हमारा एक्सप्लांट होता है तो इसलिए आप कॉम्पिटिटिवली हो सकता है कॉम्पिटिटर का आपको कम लगे क्योंकि इसमें लगभग 3000 रुपीस का जो बाकी जो सब लोग एफओआर सेल करते हैं गैलवेनाइज प्रोडक्ट भी हमारा भी एफओआर प्राइस है तो 59,000 था वो भी कस्टमर तक पहुंचा के था 66,000 जो है वो भी कस्टमर तक पहुंचा के
गॉट इट थैंक
यू
Ladies and gentlemen, to ask a question, please press star and one now. Participants who wish to ask questions may please press star and one at this time. The next question is from the line of Vikram Sharma from Nivishare. Please go ahead.
Hello. Hi, sir. First question is regarding... Can you explain the new capacity commissioned during this quarter and also new capacity coming on stream over the next few quarters like we were doing debottlenecking in stainless steel side and new plant side. So if you can explain about the overall capacity added and new capacity coming.
Q3 में हमने जैसे बताया कि गैल्वेनाइज प्रोडक्ट में हमने 1 लाख से 1,16,000 टन अचीव मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी एनहांस कर ली हमने लास्ट मंथ में उसका हमें सेल्स बेनिफिट भी मिला तो इस पूरे क्वार्टर में उसका बेनिफिट मिलेगा सेकेंडली जो हमने स्टेनलेस स्टील में 58,000 से 1,16,000 हम कर रहे हैं ये हमारा मार्च एंड तक हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे और इसका बेनिफिट हमें Q1 में नेक्स्ट ईयर मिलेगा ये दो तो हमारे जो ब्राउन फील्ड एक्सपांशन हमारे चल रहे हैं तीसरा ग्रीन फील्ड जैसे हमने बताया हुआ है कि 3,50,000 टन हम स्टेनलेस स्टील बनाने वाले हैं फर्स्ट फेज में केसदा से और जो हम अगर स्टेनलेस स्टील की बात करें कि और नया प्रोडक्ट हम जो देख रहे हैं तो उसमें हमें एक रिसर्च बेस में है कि हम सीमलेस पाइप में कैसे हम उसमें एंट्री कर पाए तो उसके मार्केट सर्वे और उसका प्रोडक्शन का जो टेक्नोलॉजी का सारे टाइप्स हम उस पर प्रयास कर रहे हैं ये हम आगे चल के हमारी प्रयास रहेगा कि हम ये भी जल्दी आपको हम करें
okay, और इसके बाद डायरेक्ट हमारा जो ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन है वो कैपेसिटी आएगा
यस सो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट कैपेसिटी टू बी कमीशन बाय Q4 2027 And all the brownfield expansion that we are currently undertaking is going live for GP it's already gone live for stainless steel it is going live by March
26. Okay. And last quarter mein hum logo ne share kiya tha ki we have started selling in 300 series. So wahan pe kya initial feedback apne ko market se mil raha hai? एक क्वार्टर में हमारा 200 वर्सेस 300 का क्या मिक्स था इन स्टेनलेस स्टील साइड
तो इफ यू सी इन Q3 वी हैव सोल्ड अराउंड 1200 टू 1300 करोड़ टन ऑफ स्टेनलेस स्टील ऑफ 300 सीरीज वी हैव गॉट गुड फीडबैक अबाउट इट वी आर इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर आल्सो वी आर रैंपिंग अप द प्रोडक्शन ऑफ 300 सीरीज इफ यू सी करेंटली द मिक्स इज if you see this for the stainless steel 300 and 200 series, it's mostly 30-70 currently, but we try to achieve 50-50 mix in Q4.
Okay, so average realization will increase to 1.4 lakh, 1.5 lakh in Q4 for this.
जो विकास जी ने बोला कि हम अभी 304 पे हम और 316 पे भी हम प्रयास कर रहे हैं इसका तो अगर हम इसको 30% से 50% ले जाते हैं तो बट ऑब्वियस ये हमारा रियलाइजेशन जो है 1,40,000 से लेके 1,50,000 टन पर टन हम पर टन हो ही जाएगा
एंड okay. एक सर जो अपना सरोरा प्लांट है वहाँ पे जैसे जनरली हम लोग पावर में ट्राई करते हैं कि हमारा इन हाउस से हो जाए
बट वहां पे आपने पीपीटी में शेयर किया कि 40-45% जैसा आपका डिपेंडेंस रहेगा पावर पे ग्रिड पे, तो वहां पे हम लोग कुछ रिन्यूएबल या कुछ ट्राई कर रहे हैं कैसे एक्सटर्नल पावर डिपेंडेंस को कम करेंगे?
जी, अगर आप देखेंगे विक्रम जी, पावर का कॉस्ट डे बाय डे और ईयर बाय ईयर हर स्टेट गवर्नमेंट फोकस है कि बढ़ाए, ताकि उनका खुद का जो डिस्कॉम है या उनका डिस्ट्रीब्यूशन आर्म्स है जो लॉस मेकिंग होते हैं यूजुअली, वो कम हो। अगर उस तरीके से देखेंगे, और हमारा एक व्यू है कि सिंस कार्बन स्टील मार्केट ऑफ इंडिया डोमेस्टिक मार्केट एक मैच्योरिटी के स्टेज पे है, तो फ्यूचर विल बी ऑन कॉस्ट कॉम्पिटिटिव बेसिस कार्बन स्टील का मार्केट ऑपरेट करेगा। फॉर दैट हमें लगता है एक 25 से 30 मेगावाट का पावर प्लांट हमें रिक्वायर होगा टू कॉम्पेंसेट फॉर 45% ऑफ आवर इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट विच वी आर करेंटली ड्रॉइंग फ्रॉम एक्सटर्नल ग्रिड। अगर हम वो प्लान करते हैं जो अंडर प्लानिंग स्टेज पे है अभी, वो अप्रोक्सीमेटली 125-150 CR का एक कैपेक्स रिक्वायरमेंट रहेगी, एंड वी कैन अचीव अपवर्ड ऑफ अराउंड 50 crore rupees इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पावर प्लांट। अभी हम लोग उसका अप्रूवल के लिए जा रहे हैं, वेरी इनिशियल स्टेज पे हैं, और लैंड एक्विजिशन भी उसका अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लैंड एक्वायर करें। तो हमको सेल्फ सफिशियंट होना है इन टर्म्स ऑफ पावर फॉर सरला प्लांट, एंड वी आर एक्टिवली वर्किंग ऑन दैट साइड।
एंड सर, एक लास्ट क्वेश्चन, आपने एक डिस्क्लोजर दिया था फ्रॉड एलिगेशन इन आर सब्सिडरी कंपनी, वहां पे कुछ अपने 11-12 crore का इन्वेस्टमेंट किया था, वो क्या था, एक बार आप क्लैरिफाई कर पाएंगे?
जी, हम एक न्यू प्रोजेक्ट, जैसे हमारा काफी सारा प्रोजेक्ट अभी अंडर कंसिडरेशन है फॉर फ्यूचर लैंड बैंकिंग, हमने एक जमीन या लैंड का ट्रांजेक्शन किया था फॉर विच एडवांस पेमेंट ऑफ 11.5 crore वॉज गिवन। ड्यूरिंग आवर ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस वी हैव फाउंड आउट दैट द लैंड इज ऑलरेडी बीइंग मॉर्गेज टू अ सर्टन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच वॉज नॉट डिस्क्लोज टू अस ड्यूरिंग द डील मेकिंग प्रोसेस। Once we found out, we demanded for either refund or get an NOC from the existing lender. So, land owner ने एक particular time period पे NOC लेके नहीं आए आ पाए, तो उसके लिए हमको उन्होंने refund approximately out of 11.5 crore, उन्होंने 9 crore का refund हमको कर दिया है। Balance 2.5 crore के लिए हम लोग actively उनको follow up कर रहे हैं for the refund. So, since हम as an intent, as a listed entity, we do not want to showcase ourselves as a entity which is procuring a mortgage land without having consent of the borrower, so we have gone ahead to file a case against the seller of the land. But current status is we have amicably, you know, got the money of 9 crore rupees from the party, and balance amount is under refund process.
Okay, sir. Thank you.
Thank you, Vikram.
Thank you, sir. Ladies and gentlemen, to ask a question, please press star and one now. The next question is from the line of Miraj from Chem9 LLP. Please go ahead.
Thank you for the opportunity, sir. So, sir, the first question jo mera tha, aapne usko thode hatta answer kar diya hai, but I would still like to just touch upon it once. Regarding the gross profit that we have seen, sir, the GP per ton, jaise hum dekhe, ya fir gross margins dekhe. तो ग्रॉस मार्जिन हम लोग का इस बार क्वार्टर एंड क्वार्टर एंड YOY बोथ हैव डिक्लाइंड, सो इसमें एक रीजन तो ये कि हमारे रियलाइजेशन गिरे थे, बट सर ERW पाइप्स के प्राइजेस भी गिरे थे, एंड आयरन ओर के कॉस्ट तो कहीं नहीं हिले है, तो इफ यू कैन जस्ट एक्सप्लेन हम लोग का जीपी क्यू ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्यों नीचे आया था इस क्वार्टर?
सर, जीपी इज ऑल कनेक्टेड विद द पाइप्स एंड ट्यूब्स,
not galvanized pipes, I'm saying gross profit, not galvanized pipes, gross profit अपना बोल, हाँ gross margin, sorry, gross margin, yes.
Because of increase in raw material cost, which CEO sir has explained earlier in the call, that raw material prices has for HR coil has decreased, but sale price has not been sale price has also been decreased, but raw material as in iron ore and sponge has not been decreased in comparison with the HR prices. And the benefit of decreased iron ore cost and sponge iron cost will showcase in Q4.
So, ma'am, if I'm not wrong, you're trying to say inventory loss tha over there? इन क्यू थ्री?
नो, इन्वेंट्री लॉस तो बहुत नहीं था कोई।
ओके ओके, बट
क्या है ना, आयरन ओर तो है ना, एक मतलब कमोडिटी प्रोडक्ट है ये। जैसे मेरा जो नवंबर में प्रिक्योर हुआ वो दिसंबर एंड में चलना शुरू हुआ, उसका बेनिफिट हमें आगे मिलेगा। जब भी ये होगा कि रॉ मटेरियल का प्राइस मान लो नीचे आएगा या बढ़ेगा, तो वो मुझे बाद में इम्पैक्ट आएगा उसका बढ़ने का। तो ये हमेशा ही हमारे साथ में रहेगा कि रॉ मटेरियल के प्राइस घटेंगे या बढ़ेंगे, उसका इम्पैक्ट दो दिन में मतलब एक क्वार्टर आगे पीछे ही आएगा हमेशा।
अंडरस्टूड। सो सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एनएमडीसी हैड रिसेंटली रिवाइज देयर प्राइसेस समवेयर इन जैन, तो उन्होंने व्हाट वाज द चेंज ओवर देयर इन प्राइसिंग इन आयरन ओर?
150 रुपीस पर टन।
दे हैव इंक्रीज्ड बाय 150 रुपीस। ओके, बट आर इंक्रीज इन ईआरडब्ल्यू पाइप प्राइसेस हैव बीन मच मोर देन दैट, राइट? जो आप आई थिंक आप अभी कॉल पे वही एक्सप्लेन कर रहे थे, 10%, सो ऑलमोस्ट
₹5,000
ओके, दैट इज समथिंग दैट यू सर। सो इफ यू कैन सर जस्ट टच अपॉन कि मतलब हम लोग का क्लाइंट है इसमें क्या रहेगा, कैसा रहेगा ये, इसमें टाइम क्या है, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी दैट यू आर सीइंग, कैन यू जस्ट गिव अस सम हाइलाइट्स ओवर हियर एज़ वेल?
सर अभी सर थोड़ा हमारे इस पे अभी आप समझो रिसर्च पे ही है, हो सकता है आपको जल्दी इसको नेक्स्ट मंथ आपको इसका हम बढ़िया न्यूज दे दें आपको।
सो जस्ट टू इलाबोरेट मिराज, अगर आप देखेंगे आवर ट्रैजेक्टरी एज अ ग्रुप, जैसे कि हमने एक स्केल और प्रॉफिटेबिलिटी कार्बन स्टील में अचीव किया, उसके बाद हमने स्टेनलेस स्टील में एक छोटे से क्वांटिटी के साथ अच्छा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी अचीव करने के बाद वी आर जस्ट इंक्रीज आवर कैपेसिटी बाय 6-fold फॉर स्टेनलेस स्टील मार्केट। सो इन दैट प्रोसेस और हमें लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड द ग्रोथ विल ओनली कम फ्रॉम वैल्यू एडेड एंड स्पेशल स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स where a company can achieve a good amount of profit or a higher margin. So, अगर वो point of view से मैं देखूँ तो हमारे लिए एक logical extension after our two successful implementation of business model for carbon and stainless steel, एक high value product और high technological oriented product में invest करना हमारे लिए एक logical extension है. So, that is why seamless as a market comes into play. अगर आप बजट को भी देखेंगे तो गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया है और काफी सारा इंसेंटिव और काफी सारा पैकेज उनको दिया है, और एवरीथिंग व्हेनेवर दिस काइंड ऑफ बजट कम्स पीछे से स्टील मार्केट ही उसको सपोर्ट करता है। एंड बेस्ट पार्ट इज सीमलेस इज समथिंग विच इज द यूज ऑफ दैट प्रोडक्ट इन द डिफेंस, इन द मरीन, इन द न्यूक्लियर पावर, इन you know, wherever you can see the usage is going to grow exponentially, जो अभी है नहीं इंडिया में, अभी एक इंडिया में मिनिमम क्वांटिटी यूज कर रहे हैं सब लोग। तो हमें लगता है कि सीमलेस एज अ प्रोडक्ट इज नेचुरल एक्सटेंशन टू वॉट वी आर डूइंग करेंटली, दैट इज वाई वी आर प्लानिंग, वी आर स्टडिंग द प्रोडक्ट, स्टडिंग द मार्केट, स्टडिंग द कॉम्पिटिटर्स एंड स्टडिंग द टेक्नोलॉजी, एंड वी इट मे हैपन दैट वी कम अप विद अ टेक्नोलॉजिकल पार्टनर इन दैट एंड वी एग्जीक्यूट दिस प्रोजेक्ट इन अ जॉइंट वेंचर मैनर। सेकेंडली, स्टेनलेस स्टील की तरफ से मैं गुड न्यूज भी आपको देना चाहूंगा कि टुडे ओनली वी हैव रिसीव्ड अप्रूवल फॉर आर पीएलआई स्कीम 1.20, जिसमें हमारा प्रोडक्ट दो एप्लीकेशन फाइल थे और दोनों का ही अप्रूवल हमें मिल गया है। डिटेल टू बी वर्कड आउट ड्यूरिंग एमओयू प्रोसेस विच विल स्टार्ट इन सेकेंड वीक ऑफ फेब्रुवरी। करेंटली वी आर हैप्पी दैट एटलीस्ट we get another, you know, bazooka in our hand in terms of PLI scheme approval for our future stainless steel product expansion.
Understood. That's great to hear that we've received the PLI approval. Sir, usme quantum abhi, can you just clarify or you still in work that how much you're going to receive?
As I said, we have not received the entire MOU or the draft that we supposed to be executed with the Government of India. That will be expected by second week of February. Upon that MOU in our hand, we can, you know, give you some number on that. I will, you know, release detailed note on that once I, you know, execute that MOU with the government.
Understood.
Yeah. And sir, on seamless part, just one more thing over here. So seamless mein toh, the raw material is required is billets, right? Then how are we going to make billets over there, even if you're doing stainless seamless?
अभी तक की जो हमारी स्टडी है उसके हिसाब से तो हम राउंड सिक्योर करके ही अगर जैसे चालू करेंगे तो उसके बाद धीरे धीरे फिर जो हमको हमारा एक बेसिक सब्जेक्ट है कि हमको पूरे इंटीग्रेशन के साथ में ही काम करना है गोइंग फॉरवर्ड वैसे ही करेंगे उसको, लेकिन वो टाइम बेयरिंग होगा कि फर्स्ट फेज में उसको पहले राउंड लेके हमने बना लिया, फिर देन राउंड अपने यहाँ बना लिया, वैसा उसको आगे बढ़ाएंगे.
Understood. Okay. I'll get back in the queue. Thank you and all the best for the future, sir.
Thank you, sir.
The next question is from the line of Aryan Bhatia from Invade Research. Please go ahead.
Thanks for the opportunity, sir. My question is regarding a stainless steel capacity. So I just wanted to know, like, in the first phase of expansion, we were bringing about something 360,000 tons. That will be right. In the first phase, and we are doing a brownfield expansion of from 58,000 to 1 lakh. So these are separate capability. Am I right? Just wanted
yes,
a clarification on this.
Yes.
Okay. So can you give the total capability which will come by FY27 for stainless steel?
It will be approximately 470,000 ton of annual capacity.
470,000. Okay, great. And my second question is, like, currently we are, you know, expanding our stainless steel. So if I look at some players, so when they do stainless steel, their raw material, sorry, working capital days is expanded due to the higher inventory days. So do you expect that when we will also expand our stainless steel capacity by 6x, so our working capital cycle is going to remain the same or will have some, you know, expansion?
As stainless steel product portfolio mix, once it increases, there will be impact on our working capital days. It will increase definitely because this market operates vis-a-vis carbon pipe market in a very different manner. So our working capital days is expected to be increased once we go live with our steel at 50,000 ton of greenfield expansion for stainless steel.
What could be the expected, you know, increase in working capital days you have calculated or are expecting from our current 20-30 days of working capital?
On a higher side, 20 days is more conservative or very conservative. I would say 10 to 15 days is at max. I think we will have initial days of, you know, increment in working capital days. Once our product gets accepted into the market, I think that will be stable at around 10 days.
Okay. And sir, my last question is like in the next year, FY27, the major growth will be coming from our stainless steel brownfield expansion because all our capability is going to be utilized in this year only.
Yes. Yes, sir.
And our total capability for FY27 will be 3,60,000 for ERW, BI and GP will be 1,12,000 and stainless steel will be also 1,00,000.
Yes. Correct.
Okay. Thank you. And best of luck.
Thank you.
Thank you, sir. The next question is from the line of Abhinav Shetty from Ilios Financial Services. Please go ahead.
Hello, sir. Am I audible?
Yes, sir.
Yes.
Yes, Abhinav.
Oh, okay, sir. Congratulations for the good set of numbers. Sir, I had a few questions. Sir, firstly, if you could give me the breakup of EBITDA per ton for the different products that we sold this quarter.
This quarter only for the stainless steel EBITDA is like 13,000 ton and the black commodity ब्लैक में जो हमने हमारी इनसाइड क्वाइल से जो हम इन हाउस प्रोडक्ट करते हैं उसमें 5600 है, जो आउटसाइड हमने प्रिक्योर किया उसमें 1500 है, एंड जो इसमें गैल्वनाइज प्रोडक्ट में जो हमारी इनहाउस क्वाइल है 6200 है, जो हमने आउटसाइड से क्वाइल प्रिक्योर की उसमें 2000 रुपीज है. अगर मैं कम्युनिटी करूँ इसका तो 5400 मुझे पूरे ऑल सारे प्रोडक्ट मिला के मुझे मिला है.
ओके सर, तो फिर वो कंबाइन करके फिर वो 5000, जैसे 5200 पे कैसे आया? मतलब स्टेनलेस स्टील का हमने प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया ना और सेल्स वॉल्यूम भी।
जी, जैसे अगर स्टेनलेस स्टील की बात करेंगे तो हम 13,400 टन हमने सेल किया, इसमें मुझे 13,000 रुपीज पर टन का मुझे बेटा हुआ। ब्लैक पाइप मेरी इन हाउस कॉइल से लगभग 42,000 हमने सेल किया, जिसमें 5,600 का मुझे बिटा हुआ। ब्लैक में ही आउटसाइड कॉइल से मैंने 15,000 टन प्रोडक्शन करके सेल किया, जिसमें 1,500 रुपीज ही मुझे बिटा मिला। एंड गैल्वेनाइज प्रोडक्ट में 7,600 टन एट द रेट 6,200 फ्रॉम इन हाउस कॉइल एंड 12,400 फ्रॉम आउटसाइड कॉइल, जिसमें हमको 2,000 रुपीज बिटा गेन हुआ। तो ये एक्चुअली जो एचआर कॉइल के प्राइजेस डाउन हुए और हमारे जो प्रोडक्ट के प्राइस तुरंत उससे इम्पैक्ट हो जाते हैं। तो जो पुरानी क्वाइल्स होती हैं उसके बनिश्चित अगर मैं देखूंगा कि भाई जो प्राइस हो रहा है, जो स्टॉक का माल जो हमको बना के सेल करना होता है, तो वो तो हाई प्राइस से लो प्राइस होता गया लगातार। अगर अक्टूबर नवंबर दिसंबर आप देखेंगे तो दिसंबर में जो गेन आया लास्ट, समझो आप जब अनाउंस किया सभी कंपनीज ने कि अब प्राइस बढ़ेंगे एचआर कॉइल के, तब जनवरी का हमारा एक एक्सपोनेंशियली आप प्राइसिंग हाइक हुआ, तो जो हमको लो रेट की हमारी कॉइल सब अच्छे रेट में सेल हुई जनवरी में। तो ये सारे प्रॉफिट्स आपको हमारे Q4 में देखने मिलेंगे। जो मैं अगर आपको बात करूं कि हमारा जो टोटल हमारा अभी 9 मंथ का जो 6,800 है, पूरे साल में आपको अबाउट 7,000 मिलेगा वो, और ओनली अगर Q4 की बात करेंगे तो 7,500 दिखेगा आपको वो।
ओके सर, ओके। और आई हैड वन मोर क्वेश्चन सर, ये मेनी बिगर प्लेयर्स आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स दिस डीएफटी टेक्नोलॉजी फॉर लार्जर डायमीटर पाइप, तो डू यू हैव एनी प्लान्स टू अडॉप्ट डीएफटी एंड एंटर द लार्जर डायमीटर पाइप सेगमेंट? अभी तो आप स्मॉल और मीडियम ट्यूब्स में।
डेफिनेटली हमारा प्लान है, जैसे हमने भी स्टेनलेस स्टील पे हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, वैसे विदर्भ हमको हमारे कार्बन स्टील पाइप्स में भी हमको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो उसके लिए हम एक प्लानिंग में है कि कैसे हम जो साइजेस अभी 7 इंचेस के ऊपर के जो 14 इंचेस तक के साइजेस हैं जो मार्केट में हम अभी हमारा एसक्यूज पूरे नहीं कर पा रहे हैं, लगभग 10-20% मार्केट हमारे से अभी हम पाइप की मार्केट को नहीं सर्व कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हमने हमारी प्लानिंग स्टेज में है हम कि हम एक 2 लाख टन का पाइप एंड ट्यूब की डीएफटी को इंस्टॉल करें अभी, लेकिन वो अभी एक समझो प्लानिंग स्टेज पे ही है, कुछ फ्रीज नहीं हुआ है उसमें, लेकिन ये हमारे बिल्कुल प्लानिंग स्टेज में है। और जो साइजेस इससे हम बना के, और इसमें हमको मार्जिन भी हमारा बढ़ेगा, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आउटसाइड कॉइल से मुझे मार्जिन कम हुए हैं और मेरे कॉम्पिटिटर ज्यादा कर पाते हैं, तो इस डीएफटी के इंस्टॉलेशन के बाद मुझे वो भी एक एज मिलेगी कि मुझे भी जो आउटसाइड कॉइल से पाइप बना के मार्जिन अच्छे मिलेंगे।
ओके सर, ओके। तो ये नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट FY27 या 28 तक ये आ सकता?
सर जल्दी अनाउंस करेंगे, लेकिन अभी तो एक प्लानिंग स्टेज पे ही है, आप मान सकते हैं ये।
और अभी ना जस्ट टू हाईलाइट, यू नो दिस इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ अ वेरी वैल्यू एडेड, इट विल एड लॉट ऑफ वैल्यू टू माई परचेजिंग पावर ऑफ कॉयल। करेंटली अगर मैं देखूँ तो 1 लाख टन का कॉयल आई एम परचेजिंग फ्रॉम आउटसाइड मार्केट, अपॉन डीएफटी आई विल हैव द रिक्वायरमेंट ऑफ लेट्स से अराउंड 2 लाख टू 2,50,000 टन ऑफ 3 लाख टन ऑफ लेट्स से कॉयल रिक्वायरमेंट एनुअली, एंड विद दैट काइंड ऑफ प्रोक्योरमेंट नो आई विल हैव अ कॉस्ट एडवांटेज और बार्गेनिंग पावर फॉर फ्रॉम द कॉयल मैन्युफैक्चरर। तो वो भी मेरे को ओवरऑल मेरा कॉयल प्रोक्योरमेंट है उसमें मेरे को एक काफी वैल्यू एड करता है, प्लस मेरा ईविटा को भी बढ़ाता है। सेकेंडली डीएफटी का अगर मार्केट देखेंगे तो ये एक अप्रूवल बेस्ड हाई मार्जिन बिजनेस है, और ये जब एसकेयू को हम लोग पूरा करते हैं 7 इंची के ऊपर का जो प्रोडक्ट है 14 इंची तक का मार्केट को, तो एक यू नो जो पार्टी कोई प्रोजेक्ट में सप्लाई दे रही होती है तो उसको एक एक पर्टिकुलर एक ही ब्रांड का पूरा माल एक जगह पे देने के लिए आसानी होता है, और उसको एक प्लांट से भी पूरा माल उठाने में ऑफटेकिंग करने में भी आसानी होता है कि उसको हर एक प्रोडक्ट एक ही जगह से मिल रहा है, तो आपका वेलोसिटी और सेल्स का ऑफटेकिंग भी बढ़ता है उससे।
ओके सर ओके सर एंड ये कॉइल्स तो हम लोग भी ऐसे बनाते हैं तो फिर वो बाहर से प्रोपेलेंट क्यों इंक्रीज करना पड़ा?
क्वाइल की कैपेसिटी जो है हमारी एक सर्टेन लेवल तक कैपेसिटी है कि यही हम बना पाएंगे, तो इसीलिए हमने केजा भी हमारा प्लान किया हुआ है कि जो अभी हम डीएफटी में बाहर की क्वाइल से माल बनाएंगे जिसमें मार्जिन दे रहे आप कि हमारे लो साइड रहते हैं थोड़े बाहर की क्वाइल से, और हमारी क्वाइल से लगभग हम 7,000 to 8,000 rupees मार्जिन आराम से ले पाते हैं, तो वो गोइंग फॉरवर्ड केजा का जब प्रोडक्शन आ जाएगा तो हम लगभग हमारे प्रोडक्ट का 80-90% जो है हमारे जो कॉइल से ही बना लेंगे, जो आपको 10 इंचेस है वो 8 इंचेस है वो जो साइजेस हैं वो हमको फिर भी कॉइल से ही बनाने पड़ेंगे।
ओके ओके ओके
हमारे पास विड्थ की रिस्ट्रिक्शन है, अभी हम जो विड्थ है वो बनाते हैं 470 तक, गोइंग फॉरवर्ड हम बनाएंगे 650 mm तक, 650 mm के ऊपर के जो कॉइल साइजेस के पाइप साइजेस बनेंगे वो हमें
ओके वो प्रोक्योर करना पड़े। ओके सर ओके थैंक यू सर एंड ऑल द बेस्ट।
थैंक यू
सर। लेडीज एंड जेंटलमैन टू आस्क अ क्वेश्चन प्लीज प्रेस स्टार एंड वन नाउ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ रुचिता फ्रॉम TJW इन्वेस्टमेंट, प्लीज गो अहेड।
हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। एबिटा पर टन दैट वी जस्ट मेंशन, सो अकॉर्डिंगली व्हाट आई गॉट दैट इन प्री गैल्वेनाइज वी मेड अराउंड 4,000 पर टन, इज दैट राइट?
पार्डन कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज।
सर ऑन द प्री गैल्वेनाइज ऑयल एंड पाइप द सेगमेंट our EBITDA per ton for the quarter comes to around 4,000 per ton. Is that right? Like whatever we procure from outside and jo bhi in-house banate hai, plus jo new capacity aaye, yes. Uske wajah se.
On a weighted average basis, yes, the number is correct.
So the number is correct, right? But on a regular basis, like, you know, if you don't see all these things, kitna ho sakta hai pre-galvanized pe, just to understand?
So we have to see it on a two-factor basis. First is what will be my EBITDA on a regular basis from my own coil, and what will be the EBITDA from the coil that I procure from the market. Agar regular market wise bolun, agar Q3 is an exception in terms of EBITDA number for us. So approximately 8,000 will be our EBITDA margin from GP pipe, which will be produced from our internal coil manufacturing, and from external coil which we are procuring from NMDC or other players. Agar uska main pipe banata hu to mera EBITDA margin approximately upward of 4,000 plus hoga.
Okay, and current what is the contribution, like is it 50-50, and how do we see that going ahead?
40-60-40 from in-house coil.
So currently galvanization is done approximately 40% of the sale from internal coil and 60% from the outside coil.
Okay, and going forward, do we want to maintain that ratio, or we will slightly go towards in-house?
We will be maintained at 60-40 level only.
Okay. So around 6,000, I think in September we had done around 7,000 EBITDA per ton. So that was kind of a one-off. So we can see around 6,000 EBITDA per ton, it means, in pre-galvanized coils.
5,000 to 6,000 in between.
Okay, 6,000. And on the ERW, sir, ERW currently is 4,500 because obviously the prices were down. But earlier, when we used to look at your company, when it was only ERW, that time it was around 7,000 per ton the EBITDA, which is now gone down to 4,500, going down only. So where do we expect that on a regular basis?
Correct. So the one reason behind the EBITDA pattern getting down, as we already explained, that it was the HR oil prices. But as you mentioned that earlier, when we used to manufacture just HR pipe, then the EBITDA used to be much higher. That was because, see, we started GP, we started slabs also, so the quantum of outside purchase coil got increased because of the GP production that we have started. So in my ERW black pipe segment, if you see, Currently, the ratio is around 75-25%. 75% I manufacture from my in-house coil, and 25% currently we are getting through outside coil. So a blended of that, as you rightly mentioned, in Q3 it was around 4500. But on a sustainable, on a full year basis, this we are expecting that this should be above 6200 to 6500 rupees on a blended level.
Okay, so normalize this 6200 to 6500.
Yeah, on a blended level, and if you consider separate EBITDA pattern for these two segments, so from in-house pipe, you can consider around 7500 rupees, and from outside coil, you can consider around 2200 to 2500 rupees on a normal level.
Okay. And CR coils ke liye 15,000 is what you are looking at, right?
Yes. SS CR coil, yes.
And for HR would be lower, around 9,000-10,000.
So HR coil we don't sell in the market.
But in FY28 we would, right? Because that capacity would be higher than our CR coil.
So there you are talking about HRAP coil of stainless steel. So yes, definitely.
Yeah.
So we have this 3.5 lakh ton of greenfield phase one project go live. We plan to sell around 50% of our capacity in HRAP form and 50% of our capacity in a cold roll form.
Right.
So in HRAP, you can expect a EBITDA margin of around 10,000, and in CR bright anode coil, you can expect a margin of around 15,000 plus.
And just to add to your last question, wherein we were discussing the EBITDA per ton on the black pipe segment. So as I mentioned, that from the outside coil around 2,000 to 2,500 rupees, but once we set up DFT, then those margins will also increase and it will go up to around 3,500 to 4,000 rupees also in the higher diameter segment.
Okay. And you were saying 3,50,000 the capacity is going to come. So HR coil is going to be from 60,000, it will go to around 4,10,000, is it?
470,000 actually.
It will be 470,000 because stainless steel is fully integrated.
HR coil abhi currently 60,000 hai, right? Which will become 116,000
ton.
So that will also become much.
So currently we are having 58,000 ton capacity, which we are increasing, which will be commissioned in March 2026 to 116,000 ton. And on top of 116,000 ton of HR, 116,000 ton of SS coil, we are adding 350,000 ton of stainless steel coil. So in total, it will be approximately 417,000 ton of installed capacity of stainless steel coil manufacturing.
470,000,
ma'am. Out of my production will be in the range of 320,000 ton to 340,000 ton. Depends on what kind of a thickness I'm manufacturing.
Okay, 340,000 can be your CR coil production, right?
Not CR, ma'am. It is HR plus CR both. Because in phase one of greenfield expansion, we will sell approximately 50% in HR form and approximately 50% of our coil in CR form.
Right. But in terms of capacity, I'm asking. Right now,
it will be 320,000 ton. So in other way, for HRAP coil will be 120,000 approximately, and rest 220,000 will be CR coil.
Exactly, that was my question. So 320,000 will be HR coil.
This is from the perspective of selling.
Right. 320,000. Okay, understood. Yeah, thank you so much.
Thank you, ma'am.
The next question is from the line of Chandresh Malpani from Niveshaay Investment Advisory. Please go ahead.
Hello.
Hi.
Hello. Yes, sir.
Sir, thank you for the opportunity. Sir, ये पहला question ये था कि जैसे आपने बताया कि galvanized side में हम लोगों ने brownfield expansion किया, तो about 15 days थोड़ा प्लांट मेंटेनेंस एंड थोड़ा शटडाउन था, तो सिमिलरली जो हम लोग स्टेनलेस स्टील साइड एक्सपांशन कर रहे हैं Q4 में जो लाइव होगा, तो उसका कुछ आप इम्पैक्ट देख रहे हैं ऑन दी करंट वॉल्यूम्स दैट वी आर डूइंग?
नहीं
एक्चुअली क्या है ना, इसमें जो मेरे सीआर कॉम्प्लेक्स में मुझे मैंने सीआर कोलोनी मिल जो नया वो किया, फिर मैं कमीशन किया, वो जस्ट उसके पास में था और कुछ उसमें भी हमारी जो पिकलिंग लाइन थी उसमें विथ हमको ऐसे एक्सचेंज करनी थी, क्योंकि मैंने वाइडर विथ का सीआर कोलोनी मिल लगाया था, तो दैट्स वाई द पिकलिंग लाइन इज स्विच्ड ऑफ एंड मेंटेनेंस इज गोइंग ऑन। बट स्टेनलेस स्टील में ऐसा नहीं है, तो पैरेलली वो प्रोडक्शन बढ़ेगा, किसी एक प्रोडक्ट को लेके जिसमें ये प्रोडक्शन हो रहा है वहां पर दिक्कत नहीं आएगी।
ओके सर, एंड सर इसी लाइन पे जो स्टेनलेस स्टील का हम ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन जो इतना मेजर कर रहे हैं, तो सर एक रैंप अप तो रिस्क में आपको क्या लगता है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने यू नो हैज बीन डिलेइंग द ड्यूटी पार्ट स्टेनलेस स्टील कॉइल में काफी टाइम से, और अभी जब विंडो भी ओपन किया, तो आपको इन यू नो जब रैंप अप हमने बेसिकली हमारा जो 60,000 मेट्रिक टन का कैपेसिटी था वो तो हमने एक साल में काफी अच्छा रैंप अप कर लिया, बट जो एक मेजर केपेक्स हम लोग यहाँ से 6x कैपेसिटी को करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या रिस्क लगता है रैंप अप का, कि आप लोग कैसे ये कॉइल्स मार्केट में सेल कर पाएंगे यू नो व्हेन वी रैंप अप द सेल्स।
देखिए दो तीन चार चीजें हैं इसमें, जैसे आपने बोला कि रैंप अप के ऊपर और वीजा वीज कॉम्पिटिशन या इम्पोर्ट के ऊपर बोला, तो अगर आप देखोगे चाइनीज इम्पोर्ट या यूरोपियन ट्रेड जो अभी फ्री हुआ, क्योंकि आप बोल रहे हो कि गवर्नमेंट हमको सेफगार्ड नहीं कर रही इन टर्म्स ऑफ स्टेनलेस स्टील, तो अगर आप ये दोनों कंट्री को देखोगे, अभी ईयू विल ऑल्सो स्टार्ट यू नो स्टैंडिंग देयर स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट प्रीडोमिनेटली अबव 400 सीरीज ओनली दे विल बी प्लेइंग एंड डुप्लेक्स सीरीज ऑफ स्टेनलेस स्टील वेयर दे आर मास्टर्ड। तो जो ये दोनों बड़े कंट्री हैं, मतलब यूरोपियन ब्लॉक एंड चाइनीज, दे आर हैविंग टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज, स्केल एडवांटेज एंड देयर ओन लोकल गवर्नमेंट सपोर्ट। सिमिलरली अगर आप देखेंगे इंडिया में भी, तो हमारे को जैसे अभी हमने बताया कि पीएलआई स्कीम में वी आर एलिजिबल, एंटायर एक्सपेंशन दैट वी आर डूइंग इज नाउ एलिजिबल अंडर पीएलआई स्कीम, तो एक गवर्नमेंट सपोर्ट इनडायरेक्ट वे में टू काउंटर एनी इम्पोर्ट इज ऑलरेडी बीइंग देयर। सेकेंडली स्केल एडवांटेज, वंस माई ब्राउनफील्ड गोज लाइव ऑफ 1,16,000 टन स्टेनलेस स्टील कॉइल, अपार्ट फ्रॉम दैट 3,50,000 टन का मेरा अगर स्टेनलेस स्टील का जो ग्रीनफील्ड का भी गो लाइव होता है, तो मुझे भी वो स्केल एडवांटेज रहेगा विजाविज एनी अदर इंटरनेशनल प्लेयर, एंड प्रीडोमिनेंटली मेरा जो प्रोडक्ट है वो 200 और 300 सीरीज का है, जहां पे यूजुअली अगर हम देखेंगे तो यूरोपियन ब्लॉक विल नॉट बी सेंडिंग दैट प्रोडक्ट हियर, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इनटू वेरी हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट ऑफ स्टेनलेस स्टील। तो हमें हमारा मानना है कि इवन इफ गवर्नमेंट इज नॉट सेफगार्डिंग अस, नेचुरल फॉर्म में पीएलआई स्कीम के थ्रू प्लस हमारा खुद का स्केल का एडवांटेज हमें मिलेगा, जिसके कारण हम मार्केट में अच्छे से हमारे प्रोडक्ट को उतार पाएंगे। सेकेंडली हम ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का जब चालू कर रहे हैं, हमारे पास अभी 1 से 1.5 साल का समय है लेट्स से, तो वी आर ऑलरेडी ऑन द फील्ड एंड हमारा ऑलरेडी सेल्स टीम एंड मार्केटिंग टीम इज बीइंग हायर, दे आर ऑन जॉब टू यू नो क्रिएट अ मार्केट फॉर दैट एडिशनल कैपेसिटी दैट वी आर कमिंग अप विद। तो द टाइम इन Q4 व्हेन आई विल बी देयर फॉर रेडी फॉर प्रोडक्शन, तो मेरा ऑलरेडी एक मार्केट क्रिएटेड रहेगा।
ब्रांड बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा स्पेस खाली है स्टेनलेस स्टील में, जैसे कि आपने देखा कि जो एपीएल ने किया एक तो ब्लैक में जिंदल बहुत पुराने थे, लेकिन उन्होंने बहुत ब्रांडिंग नहीं की, वैसे आज हमें लगता है कि स्टेनलेस स्टील में एक ब्रांडिंग का बहुत बड़ा मार्केट ब्लैंक है, तो उस पर हम लगे हुए हैं कि हम हमारे एक तो ब्रांडिंग करें, दूसरा जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अभी हमारी विड्थ बहुत लिमिटेड है, तो हम पाइप सेगमेंट को ही ज्यादा फोकस करते हैं अभी, उसके बाद किचन सेगमेंट हमारा शुरू हो जाएगा, वाटर बॉटल सेगमेंट शुरू हो जाएगा, तो इस तरीके से अलग अलग सेगमेंट्स में हम अलग अलग क्वांटम सप्लाई कर पाएंगे, और जो हमारी मार्केट बहुत थोरोली आप समझो स्टडी की हुई है, और हर मार्केट में हम हमारा मार्केट माल भी धीरे धीरे एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि ये मार्केट में सारे लोगों को हम जाने, सारे कंज्यूमर्स को हम कंज्यूमर्स हमको जाने।
ओके ओके गॉट इट सर, एंड सर वन लास्ट क्वेश्चन ऑन दी डेट पोजीशन क्या रही हमारी एज ऑफ दिसंबर एंड?
So the total debt as on 31st December was 210 crores, out of which 40 crores is term loan and 170 crores is working capital loan.
Okay, got it. Thank you so much and all the best.
Thank you.
Thank you.
Thank you, sir. The next question is from the line of Pushpender Jindal, an individual investor. Please go ahead.
Thanks for the opportunity, sir. Ye hamara guidance kya hai for Q4 and FY26? Because we are already like two quarters. Even if we do 7,500 or 6,800 blended, jo mal bik gaya hai quarter one to quarter three mein, that is already sold at that price, right? So what is the guidance that we are looking for this year and maybe next year after all of your expansions? At least the expansion plan for this year.
For Q4 का हम लोग बात करें तो weighted average जो मैं expect कर रहा हूँ 7,500 के आसपास का EBITDA on a blended basis and overall अगर 2026 का मैं बात करूँ तो we are confident कि we will be achieving upward of 260 crore of operating EBITDA on an enterprise level and weighted average wise 7,000 rupees EBITDA per ton on a blended basis we are comfortable achieving that number.
So that means your volumes will be very high in quarter four. So is there any guidance for quarter four?
Volume, it may be the approximately 1 lakh.
Yeah.
Blended.
1 lakh 5 or 1 lakh in between.
That's a blended volume, right? So I won't go for your.
Yes.
ठीक है सर थैंक्स मेरा यही क्वेश्चन था बिकॉज यू नो वी जस्ट वर पुटिंग अप सम नंबर्स टुगेदर फॉर द FY26 बट आई थिंक दैट्स एक्चुअली लैकिंग बाय क्वाइट अ लॉट ऑफ डिफरेंस सो वी आर ट्राइंग टू मॉडल द बिजनेस विद द गाइडेंस दैट यू बीन गिवन अस फॉर द लास्ट टू क्वार्टर्स ठीक है सर थैंक यू ऑल द बेस्ट
थैंक यू
सर. The next question is from the line of Hardik Gandhi from HPMG. Please go ahead.
Hi, sir. Thank you for taking the question again. Just wanted to know, so right now our term loan is 40 crores, right? So how are we funding the new capex completely? Because we just reduced our term loan debt in the last quarter, I think. तो ये नया capex में stage 1, stage 2, stage 3 का क्या individual capex है अपना?
So if you see अगर हम लोग का अभी तक financial closure wise phase 1 is already being planned and उसी का ही financial closure है हमारे हाथ में अगर project cost wise बात करें तो 930 to 940 crore is approximately the cost that we are going to incur for phase 1 out of which 250 crore as on December is already being incurred so balance approximately 700 crore capex to be done in next 12 months out of which we are looking at raising 600 and 650 crore rupees from the long-term debt and balance will be from the internal accrual. So, if you see the overall project wise, 650 crore will be from the external debt and 300 crore rupees approximately will be from our internal accrual.
Right. And sir, the timelines are up now. We are expecting commercialization by Q4, right? Or Q4 next year and the numbers should start reflecting in Q1 FY28.
Yeah, definitely.
Right. So, and then just to understand more on our brand awareness and marketing side, what are the steps being taken overall? Are we expanding into other geographies? What is the strategy on that front?
जैसे carbon steel की बात करूँ, pipe and tubes की, तो वो हमारे पास में आज जो हम west, central और north की demand को हम कहीं ज़्यादा focus हमारा area है. तो वही हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि हम जो ऑन ग्राउंड लेवल पे जो कस्टमर के पास या जो फैब्रिकेटर्स हैं रिटेलर्स हैं तो हम रेगुलरली उनकी मीट कर रहे हैं हर मंथ हम एक स्टेट में एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का डीलर मीट कर रहे हैं चाय पे चर्चा कर रहे हैं तो इस तरीके के इवेंट्स कर रहे हैं कि जिससे फैब्रिकेटर को हमारे माल के बारे में एजुकेट करा पाए और उसको वहां से हमारी डिमांड को हम इम्प्रूव करा पाए डिमांड को वहां से लेके आए तो बहुत ज्यादा मार्केटिंग में कि कोई हम कोई एड और कोई ब्रांड एम्बेसडर पे अभी हमारा फोकस नहीं है और स्टेनलेस स्टील पे पूरे इंडिया में मार्केटिंग कर रहे हैं हम लोग स्टेनलेस स्टील पे भी हम उसी तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे एक बार लोग संभव को जाने इज अ सिमिलर प्रोडक्ट टू द हाइएस्ट ब्रांड ऑफ इंडिया तो वो उसका एस्टेब्लिशमेंट करना प्रोडक्ट लोगों को दिखाना सारे फेब्रिकेटर्स के पास में जाके उनको समझाना और वहां पे एक कोई पाइप मैन्युफैक्चरर्स को अपने को ब्रांडिंग में डेवलप करना, ये हमारा अभी टारगेट है मार्केटिंग का। गोइंग फॉरवर्ड जब हम ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, हमारा सेकंड फर्स्ट पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, तब फिर हम जो जो आप बोल सकते हो ब्रांडिंग है, जो सॉफ्ट ब्रांडिंग है, उसमें भी हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे।
सर, पर अभी नॉर्थ ईस्ट में लाइक द गवर्नमेंट मेंशन नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ इज गोइंग टू बी देयर की फोकस फॉर डेवलपमेंट, राइट? सो मे बी एनी प्रोएक्टिव स्टेप्स टू एक्सपांड देयर। एंड सेकंड थिंग इज वेयर what to understand more on the price differential between your product and the topmost player, like maybe APL Apollo or someone who has a bigger brand name, what is the cost differential, just to understand more of
stainless
steel, kitna grow kar sakta
hai stainless steel mein jo hai wo maan ke chaliye 1-2% ka hi difference hai top brand se aur hamare beech mein, लेकिन जो अपना और सिमिलरली लेवल पे जो हमारा जैसे आज जो कार्बन स्टील पाइप्स में हमारे जो टॉप ब्रांड है उनसे भी हमारा लगभग 2-3% का ही या मैक्सिमम 4% का आप बोल सकते हो उनका प्राइस डिफरेंस है। और वो भी हमारा इस कारण है क्योंकि हमारे पास एक्सक्यूज पूरे नहीं है यार। हम आज 7 इंचेस तक के पाइप में एक डील कर रहे हैं और ये बहुत सक्सेसफुली हमने अचीव किया है मार्केट में, और प्राइस इसके अगर इसके कॉम्पिटिशन में देखेंगे तो हम प्राइस अच्छे ले पा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो हम देखेंगे कि प्राइस जो हमारी जो एक कॉम्पिटिटिवनेस 3-4% यस कम है।
Understood. And just the last question from my end, ki going forward, when you mentioned there will be you are planning to do something on the seamless pipe side, maybe a JV or something like that. So uska ek pura alag capex hoga ya fir is it already included in the planning of stage 2 and 3 as well as to understand more from you ki other seamless companies, Jindal Saw hai, then Maharashtra Seamless, and these other 2-3 players, they are kind of struggling with their top line and bottom line. So why are we foraying into that, and what is keeping us confident that there will be significant demand?
We are going on the stainless steel seamless, not the carbon steel seamless, first of all.
Okay.
And stainless steel seamless mein abhi matlab demand cater nahi ho pa rahi hai, baki vikas ko batayenge.
जो पहला क्वेश्चन था आपका कि कैपेक्स, अगर कैपेक्स करेंगे तो वो इट इज अपार्ट फ्रॉम व्हाट कैपेक्स वी हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड, सो इट इज अ सेपरेट कैपेक्स दैट विल बी अनाउंस्ड। और सेकेंडली, हमने जैसा आपको बोला सीमलेस का प्रोडक्ट मार्केट और टेक्नोलॉजी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। आप जैसे बोले महाराष्ट्र सीमलेस और जिंदल सॉ, आई थिंक दे आर इन अ कार्बन सीमलेस मार्केट, नॉट इन अ स्टेनलेस सीमलेट मार्केट। स्टेनलेस सीमलेस मार्केट अभी भी एक ग्रोथ परस्पेक्टिव में काफी अच्छा है, एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट है आज भी, और काफी SKUs इंडिया में बनते ही नहीं है। मतलब उसमें अगर आप देखेंगे तो 6 इंची के ऊपर का सीमलेस आज भी इंपोर्ट होता है। तो हम वही गैप को टारगेट कर रहे हैं करेंटली, जो भी हमें लग जहाँ पे मैं
डेवलपिंग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन फॉर द हायर डायमीटर,
इसको ऑल द स्ट्रेटेजीज दैट वी आर अडॉप्टिंग, बट या इन अ वे यू हैव एंसर्ड माई यू एंसर्ड मी एक्चुअली।
ओके, अंडरस्टूड सर, थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, ऑल द बेस्ट।
थैंक यू हार्दिक।
Thank you, sir. Ladies and gentlemen, that was the last question for today. I would now like to hand the conference over to management for closing comments.
Thank you, everyone, for participating in this call. We trust that we have addressed all your queries during the session. However, if there are any remaining questions, please feel free to reach out to our investor relationship team at Go India Advisors. Once again, we extended our gratitude to all the participants for joining us today. Thank you. Have a great day.
Thank you, sir. On behalf of Monarch Networth Capital Limited, that concludes this conference call. Thank you for joining us, and you may now disconnect your line.
Thank you all.